इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल स्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249।
वेलकम बैक तमाम सामाईन को जो हमें सुन रहे हैं 770 एम पर प्रोग्राम साज़ो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद, और अब गर्मा गर्म खबरें लेकर इस ठंडे मौसम में वन एंड ओनली विद द चार फॉलोअर्स प्राउडली प्रेजेंट मिसेज शाज़िया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
तुम कैसे हो भाई?
इंट्रो चेंज किया ना मैंने आपके लिए।
अच्छा
वो कर दिया। प्रोटोकॉल दिया जाए ना आपको।
अच्छा और जो जलील कर दिया मेरे साथ चार
आप जलील हो आपके दुश्मन
यानी तुम
अल्लाह वक्कर
अपने आप को। तो मैंने तुम्हें कहा ना मुंह ना खोला करो ज्यादा।
मैं तो दुश्मन हो गया आपका।
ज्यादा मुंह खोलते हो बस फंस जाते हो।
मैं तो हर रोज दुआ करता हूँ चार से पांच हो जाए।
अब हो नहीं रहे तो हम क्या
नहीं हो रहे तो हम क्या करें।
हमने तो पूरी कोशिश
मैंने पूरी कोशिश कर
हमने तो अपने जो प्लेटफॉर्म से टिंडे भी दिखाए कि शायद आपकी तरफ कोई आ जाए।
अब
क्या करें नहीं आ रहा तो मार के उसको।
मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैंने हर मुमकिन कोशिश की।
अच्छा अच्छा
कि वो किसी तरीके से पांच हो जाए।
हाँ
लेकिन
नहीं, अभी तक तुमने दिखे मारे ना कोई ठुडे छुडे मारो तो शायद कोई रुड़कता हुआ आ जाए।
सर मैं अब इस बारे में भी अब सोचूंगा।
अच्छा अच्छा
कि भाई ठुडे मारने
हाँ
शायद आ जाए एकाध कोई।
हाँ कोई एकाध आ जाए।
वैसे तो हालात नहीं लग रहे।
नहीं लग रहे
क्योंकि आपको हाँ। कहते हैं ना कि आवाम का हाँ। नर्व समझनी होती है उनका हाँ। दुख समझना होता
अच्छा,
है
अच्छा।
आपको समझना होता है कि उनको नहीं, क्या
तो
चाहिए।
तुम उनको टेंट दिखा के क्या दुख उनसे शेयर कर रहे हो भाई।
ओहो दुख नहीं उनसे हाँ। ये एग्जांपल है।
अच्छा
अपने बालों का ख्याल करो तो उनको थोड़ा एक मोटिवेशन एक अंदर एक जुनून होता है एक स्पार्क पैदा होता है करंट पैदा होता
है जुनून।
कहता है यार इस जवानी में आमिर अहमद साहब जो है वो महरूम हो गए।
नहीं नहीं आगे बहुत खूबसूरत आदमी है।
देखा लोग बोलते हैं जिसका चर्चा लोग करें
हाँ?
उसका हम क्या करें
हाँ? नहीं पहले तो तुम कहते थे ना खूबसूरत आदमी और ये और वो।
देखें एक बार आप जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बहुत सारी चीजें होती है ना
हाँ?
आप उनका जो है वो एड चलाते हैं
हाँ?
अब एड जबान अब जैसे 770 के बोलने की किसी को जरूरत नहीं है
हाँ?
लोगों को मालूम है तो इस तरह का मुझे बोलने की जरूरत नहीं है मैं खूबसूरत।
अच्छा अच्छा
770 का ये आवाज हाँ, तो सबको पता है।
अच्छा अच्छा
तो वो बार बार होते जी 770 ये होते यस वी नो 770 तो इसी तरीके से
मेरा मित्र सबको पता
अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है जी।
अच्छा आपके नन्ने चुनने जो फॉलोअर्स हैं चार वो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा।
चलो
बोलेंगे आमिर अहमद साहब वैसे ही आप आधे घंटे से बकवास कर रहे थे यही के बारे में तो हमें हमारा ब्लड प्रेशर वो तड़पते हैं ना बेचारे जमीन पे नहीं बच्चे लौट रहे होते हैं उनको पांच मिनट भी जो है वो फीडर उनका दूध हाँ, देर हो जाए हाँ, उनको खाने पीने के लिए चम्मच मार रहे होंगे प्लेटों हाँ, में मम्मा खाना लेके आओ
हाँ,
आपके फॉलोअर्स वही हैं।
अच्छा,
अभी मुझे कॉल कर देंगे ओ भाई बंद कर यार चल उन हाँ, खबरें सुनने दे।
वैसे मैंने आपको कुछ अर्सा पहले मशवरा दिया था आप नौटंकी किया करो आप क्या इधर मैं आप गलत प्रोफेशन में हो आप प्लीज ड्रामा इंडस्ट्री में जाओ। वैसे भी क्रांची से हो सारे प्रोडक्शन हाउस वहीं पे हैं प्लीज वहां जाओ कोई ड्रामा श्रामा करो
फिर जाएगा टैरिफ तो नहीं लग जाएगा।
नहीं नहीं वहाँ ही टैरिफ है ना टैरिफ यहाँ पे है कनाडा में
है।
तो इधर से आपकी टैरिफ से जान भी छूट जाएगी। ठीक है जी
ये आइडिया तो मैं
कह रही हूँ जितनी हमदर्दी मुझे तुम्हारे साथ है किसी को दुनिया में नहीं
है। नहीं ये तो मैं इस पर सोल्ड हूँ।
हाँ बिल्कुल तो तुम क्रांची में जाके ड्रामे करो ये ऐसे ही जो है काम करिए।
मसला बताऊँ क्या
लाइफ
क्रांची में जैसे भी मैं होकर आया तो मुझसे बड़े बड़े ड्रामे
तो तुम्हारा फेल हो जाएगा।
मतलब वहाँ तो एक से एक बड़ा ड्रामा मौजूद है,
तो बस तुम्हारे फेल।
मैं कहा नहीं यार, जो इज्जत अल्लाह ने दी हुई है उसको बचा के
रखो। मुल्क में कम है ड्रामे, उधर ही मैं जाता हूँ।
जहाँ कम है वहीं सही है,
वहीं सही है।
क्योंकि वो बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना। देखिए एक मिसाल दे रहा हूँ, एक ये मजाक है जैसे जो नथिंग पर्सनल, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी आप जो हैं वो अंधों में काना राजा, तो बस इसको जहन में रखो।
तो तुम इस व्यक्ति ने डरे ना चाहते।
मैं ये नहीं बोला, मैं तो जोक के तौर पे कहा।
समझ रहे हैं हम वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस।
तो आप न्यूज सुनाएं।
चलो ठीक है। ओके जी, ओके जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। और प्यार बढ़ा ले राजा बादशाह जी से, बस बिल्कुल 1775 आपके भी बचेंगे जैसे कि आमिर के बचे हैं। और बहुत जबरदस्त आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस देते हैं, आप उनके पास जाएं, ऑल स्टेट के साथ हैं। और जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रक है वो फराटे भरता फिरे, तो QTL पे जाएं, क्विक ट्रक लियो, एक रस्ते से अंदर जाएं, दूसरे से आप बाहर आ जाएं 15 मिनट्स में, नेपली की लोकेशन पे जाएं, साथ ही US सेंटर हो जाएं अपना जो ऑयल वॉयल चेंज कराना है जो उसका ट्रक का। और अगर आपको आज वीकेंड है मजे के खाने खाने हैं, तो फैसल चढ़ा साहब के पास जाओ, उनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में है, एक ओकविल में है, तो एंजॉय का मजा लें, आप जाएं उधर। और अगर खाने के बाद आपके दंत पीले हो गए हैं, तो फिर आप जाएं डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे, है जी, नया डेंटिस्ट ये क्लिनिक खुला है, डॉक्टर नाजिया रहमान ने खोला है, वहां पे आप जाओ और जबरदस्त हर तरह की वो आपको सर्विसेज देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। अच्छा, आज जनाब जो है एक US कैनेडा रिलेशनशिप के ऊपर एक मीटिंग थी ट्रूडो साहब की ट्रोनो के अंदर, तो वहां पे जाने से पहले उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि कल से जो है वो टैरिफ्स लग रहे हैं और ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, और वैसे तो हम नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह का कोई काम हो, लेकिन अगर कुछ हमारे साथ हुआ तो फिर हमको एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की जो ट्रेड वॉर होती है वो बहुत ही डेट्रोमेंटल होगी दोनों ही इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डीपली लिंक्ड हैं। इसके साथ आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा जी मैं शुगर कोट कोई चीज नहीं करना चाहता हूं, नेशन जो है उसको बहुत डिफिकल्ट टाइम का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों और वीक्स में, और खासतौर पे वो जिन्होंने $7 मिलियन नहीं बनाए। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अच्छा जी, तो वो कहते हैं जी कि मुझे पता है कि कैनेडियन बहुत एंशियस और वॉरिड है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है आपके साथ खड़ा हुआ है। और ये उन्होंने बातें उस वक्त की जब ट्रंप साहब ने बिल्कुल ये कंफर्म किया कि फर्स्ट ऑफ जो फरवरी है उसको हम बिल्कुल ये बड़े, उन्होंने कहा जी बड़े हम पनिशिंग टैरिफ्स जो हैं वो कनाडा के ऊपर लगा रहे हैं। आज बात कर रहे थे ओवल ऑफिस में, और उन्होंने कहा जी कि मेक्सिको और कनाडा जो हैं वो हमारे साथ कभी उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं की, और हमें बड़ा अनफेयरली जो है ट्रेड के अंदर उन्होंने डील किया है। और आज ट्रंप साहब ने बड़ी उससे कहा, जो उनका स्टाइल है, कहते हैं यानी कि असी नहीं कहते पंजाबी में दफाओ, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा दफाओ, उन्होंने कहा जी हमें तुम्हारे जो है ना कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो है वो प्रोडक्ट्स की हमको कुछ जरूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ हमको चाहिए नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, अगर आप कहते हो हमको उनका तेल चाहिए तो नहीं चाहिए, बहुत है हमारे पास, अगर आप कहते हो कि जी हमको लंबर चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, इससे कि हमारे पास बहुत दरख्त हैं ऑलरेडी, हम अपना लंबर बना लेंगे। और वो कहते हैं जी कि जो है ये दोनों ही जो है इन्होंने हमें बहुत अनफेयरली किया। अच्छा, ये इससे पहले जो है थोड़ा सा कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि जी शायद जो है ये टैरिफ्स नहीं लगेंगे कनाडा के ऊपर और जो है उसके ऊपर मेक्सिको पे, और शायद ये चीज डेफर होके March 1st पे चली जाए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो अब नई आई है कैरोलिन लेविट, उन्होंने आज कहा कि ये मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप साहब जो है इसको डिले करेंगे कनाडा के ऊपर और मेक्सिको पे लगाने के लिए, 1st फरवरी को नहीं लगा रहे हैं, March 1st को, ये बिल्कुल फॉल्स है, और बिल्कुल 1st फरवरी को ही टैरिफ्स लग रहे हैं, यानी कि कल सैटरडे को, यानी कि थोड़ा वीकेंड अच्छा ना गुजरे जी। ठीक है जी, तो कल से जनाब ये उन्होंने कन्फर्म किया। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो अनाउंस की है, क्योंकि मुश्किलें आ रही हैं ना आप सब, उन्होंने कहा जी हम डेफर कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज टू कैपिटल गेन्स, और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंक्लूजन रेट था फ्रॉम June 25th ऑफ दिस ईयर टू January 1st 2026, इसको हम अब पीछे धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा जी इंक्रीज इंक्लूजन टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स टैक्स जो है, जिसको कि सबसे पहले प्रपोज किया था फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बजट में लास्ट अप्रैल में, टैक्स हाइक जो है वो उन्होंने कहा था कि वुड रेज इंक्लूजन रेट ऑन कैपिटल गेन्स जो कि कंपनीज पे करती हैं टू 2/3 फ्रॉम 1st half। चेंजेस जो है वो अप्लाई करेंगे ऑन ऑल दोज अर्निंग्स जिनका कैपिटल गेन्स है ओवर $250 पे डोमिनिक ली ब्लॉन जो कि हमारे इंटर गवर्नमेंटल मिनिस्टर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि जो हालात हम देख रहे हैं इस वक्त, तो उसके रहते हुए हम जो है वो कहते हैं कि हमको कुछ रिस्पॉन्सिबल चीज करनी चाहिए। निशान डोमिनिक ली ब्लॉन की जरा तस्वीर दिखाएं, तो वो कहते हैं जी कि हम उनकी जरा रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम ये काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि हम जरा बहुत ओपन तरीके से जो है बातचीत करना चाहते हैं कनेडियंस के साथ, और हम कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल थिंग हमको करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन करेंगे उसके अंदर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कनेडियंस जो हैं उनकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो जरा कंट्रोल में रहे, और हम भी एनकरेज करते हैं रोबस्ट सस्टेन्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये इस तरह की बातें जो हैं इन्होंने की हैं। अच्छा, ये असल में बहुत चूंकि इंपॉर्टेंट की खबर, इसलिए मैंने नंबर दो पे की, वरना नंबर वन खबर से जो रिलेटेड खबर है वो मैं आपको आप सुनाने लगी हूं कि फेडरल कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स का ट्रायो है वो अब वॉशिंगटन जा रहा है लास्ट डिच एफर्ट्स करने के लिए, बल्कि उधर ही है वहां पे, कि ये कोशिश करे कि यूएस जो है स्टॉप कर दे जो ट्रंप साहब हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक टैरिफ्स लगाने चाह रहे हैं उनको। इस सिलसिले में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली, पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डेविड मैगिंटी, इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर जो हैं इस वक्त वहां पे हैं, और जो मेलानी जोली हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मार्को रूबियो के साथ भी, और ये बाकी के भी जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। ये लोग डीसी में हैं और ये लास्ट डिप्लोमेटिक पुश, क्योंकि आपको पता ही है कि आज आखिरी दिन है, कल है 1 फरवरी, तो उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हैं उनके साथ भी ये मिले, सिर्फ ट्रंप साहब की टीम से ना मिले, दूसरों से भी जरा जाके मिले और उनको बताएं कि भाई अपने जो प्रेसिडेंट साहब हैं जरा उनको समझाओ। लेकिन जाहिर है कि ट्रंप साहब को कौन समझा सकता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डोमिनिक डी ब्लॉन, उन्होंने आपको पता ही है कि हमने कल आपको बताया था कि लिब्लॉन साहब ने एक वीडियो जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी पे उनको भेजा है अपने जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वहां पे अमेरिका में, और उसको लोगों ने जब पूछा कि उसके अंदर क्या है उसको डिस्क्लोज करेंगे, तो उन्होंने कहा जी ये उसकी मर्जी है। यानी कि वो बताना ये चाहते हैं कि भाई जो जो बातें आप हमको कहते थे कि हम बॉर्डर पे करें वो हमने कर दी हैं, तो अब यानी कि हर बंदा कोशिश कर रहा है। कि ये तीन मिनिस्टर्स जो हैं ये भी डीसी में हैं, डोमिनिक ली ब्लॉन साहब ने भी एक वीडियो भेज दिया है, तो कोशिश जो है कनाडा की पूरी है कि किसी तरह से ये चीजें अवर्ट हो जाएं। लेकिन हम आपको बता ही चुके हैं कि बस वही ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं ना मानूं। फर्स्ट वीक जो है जी, अभी एक ही वीक हुआ था कि जब ये अनाउंस किया था एमपी जेमी बेटिस्ट ने कि वो जो है लिबरल पार्टी की कैंडिडेटर जो है उसकी वो ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं अपनी कैंपेन, और आज एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं मार्क कार्नी जो है उनको मैं एंडोर्स कर रहा हूं। ये जो एमपी जेमी बेटिस्ट हैं ये सिडनी विक्टोरिया राइडिंग से हैं इन केप ब्रेटन, नहीं जीशान, ये मार्क कार्नी है, दिस वन इज मार्क कार्नी, जो एमपी जेमी बेटिस्ट हैं वो दूसरे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं मार्क कार्नी जो है, हाँ जी ये है, देखिए आप जो हमारा टीवी देख रहे हैं जेमी बेटिस्ट को, इन्होंने कहा जी कि मैं अब ऑफिशियली जो है, जिन्होंने अपनी कैंडिडेसी वैसे अनाउंस की थी January 23 को, अभी एक ही हफ्ता गुजरा था, और ये होने वाले थे फर्स्ट इंडिजिनस पर्सन टू रन फॉर द जॉब, लेकिन उन्होंने आज कहा जी कि बहुत मैंने केयरफुल कंसिडरेशन किया और उसके बाद मैंने डिस्कस भी किया और मुझे लगा कि अब जो वे फॉरवर्ड है टू एडवोकेट एंड एडवांस आवर प्रायोरिटीज, तो उसके लिए जो है मुझे लगता है कि हमको मार्क कार्नी के पीछे खड़ा होना चाहिए। उनको वो कहते हैं जी कि हमको और ज्यादा रिकंसिलिएशन की जरूरत है, अपना एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का जरूरत है, अफोर्डेबल जो है वो हाउसिंग हमको चाहिए, और वेल्थ जो वेल्थ गैप बहुत बढ़ता जा रहा है जिसको कि मार्क कार्नी बहुत अच्छे से जो है वो एड्रेस कर सकेंगे। और उन्होंने कहा जी मैं बड़ा एक्साइटेड हूं टू वर्क विथ हिम एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ लीडरशिप रेस, और उन्होंने कहा जी कि हम अगर इकट्ठे खड़े रहेंगे तो हम चीजों को आगे लेके जा सकेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट लिबरल लीडर और प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये अब रेस से निकल गए हैं। मार्क कार्नी जो है जी, आज वो एक कैंपेन स्टाइल का स्पीच कर रहे थे हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में, और उन्होंने कहा जी कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आएगी ये बहुत ही कंटेंशियस जो कार्बन टैक्स है इसको बिल्कुल इमीडिएटली ये रिमूव कर देंगे, इसके अलावा वो इंसेंटिव प्रोग्राम्स देंगे टू रिवॉर्ड दोज जो के चूज करेंगे ग्रीन इनिशिएटिव्स या के एको फ्रेंडली ऑप्शंस लेंगे ऑन ऑटोज, होम इंस्टॉलेशंस और दूसरी चीजों के ऊपर। वो कहते हैं जी इसको मैं रिप्लेस करूंगा विद द ग्रीन इंसेंटिव्स, और वो कहते हैं जी कि जो लोग कम इस्तेमाल ऐड कर रहे हैं इस एमिशंस में उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं जी मैं प्लान आउटलाइन करूंगा कि जो बिगर पोल्यूटर्स हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस कंपनीज जो हैं वो ज्यादा पे करें और लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीनर चॉइसेस की तरफ जाएं ताकि हर कोई अपना फेयर शेयर जो है वो पे करे, ऐसे ही बिला वजह का जो है शेयर ना पे करे एमिशंस के लिए। लिबरल लीडरशिप होपफुल जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी, उन्होंने भी कहा है जी कि कनाडा के ऊपर अगर लगाए गए जो टैरिफ्स लगाए गए तो फिर हमको टारगेट करना चाहिए जो अमेरिका की बड़ी कंपनी और जो बड़े क्लोज फ्रेंड हैं ट्रंप साहब के एलॉन मस्क उसकी टेस्ला को, और यूएस जो अल्कोहल है उसके ऊपर हमको रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने की जरूरत है क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं वो हमको बहुत ज्यादा थ्रेट्स कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमको तो 100% टैरिफ लगाना चाहिए यूएस के वाइन बियर स्पिरिट्स और टेस्लास के ऊपर जस्ट टू एंश्योर कि उनका जो विस्कॉन्सिन का जो डेयरी फार्मर है उसको भी थोड़ा तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा हमको टारगेट करना है टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को और दूसरे जो पॉलिटिकल पावर ब्रोकर्स हैं और लॉबिंग ग्रुप्स हैं उनको भी हमको टैप करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हमको इस वक्त जरूरत है कि हम जो ट्रंप के क्लोजेस्ट सपोर्टर्स हैं उनको जरा हम थोड़ा एक वेकअप कॉल दें और उनको बताएं कि अगर आप कनाडा को हिट करोगे तो हम भी आपको हिट बैक करेंगे और अगर हमको दुखेगा तो आपको भी दुखेगा। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले अभी टेस्ला के जो सीएफओ हैं, नॉट एलॉन मस्क, वो एलॉन मस्क जो है वो मालिक है उसके ना, ओनर हैं, ये सीएफओ जो इनके हैं उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने कहा था कि अगर टैरिफ्स लगाए इन्होंने टेस्ला पे वहां पे कनाडा में तो फिर इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा। तो उसी की तरफ आज क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है वो इशारा कर रही थी। ऑन्टेरियो की जो लिबरल लीडर है बॉनी क्रॉम्बी जी वो आज खड़े हुए थी उधर लाइन टू ऑफ कैनेडी स्टेशन में और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इंस्टॉल करूंगी बैरियर्स ऑन टीटीसी सबवे प्लेटफॉर्म्स इन ट्रोनो अगर वो प्रीमियर बन जाती हैं। वो कहते हैं जी ओवर 1 मिलियन लोग टीजीसी को रोज यूज करते हैं और फिर कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें वो सेफ फील नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारा लोग जो है वो टीजीसी को एज अ शेल्टर भी यूज करते हैं और कभी कभी आप बहुत सर्दी में आते हैं और आप देखते हैं कि कुछ अजीब से लोग हैं और आप सेफ नहीं फील करते हैं और अभी बहुत सारे स्टैबिंग और असॉल्ट के भी केसेज इन स्टेशन पे हुए हैं। तो इसलिए मैं कहती हूं कि ये हमको इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे जो है वो बैरियर्स लगाने पड़ेंगे। तो टीडीसी जो है उसने लिस्ट किया था ये प्लेटफॉर्म एज डोर्स लेकिन अपने अनफंडेड आइटम्स में उन्होंने डाला था और उन्होंने कहा था जी कि इसको हम नेक्स्ट 15 ईयर्स में टीडीसी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और ये चीजें लगा सकते हैं और उसका जो एस्टीमेट लगाया था उसमें कहा था कि $4.1 बिलियन लगेंगे अगर ये आप बैरियर्स इंस्टॉल करेंगे। तो मनी क्रॉम्बी ने कहा कि अभी क्या करेंगे, अभी सेफ्टी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो अभी अगर इसके ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे तो हमको लगाने ही पड़ेंगे। तो ऐसे उन्होंने करके आज बात की। अच्छा जनाब फरवरी कल से शुरू हो रहा है और अगर आमिर तुम कल जो है ग्रोसरी करने जा रहे हो तो तुम्हें काफी तकलीफ होने वाली है क्योंकि ग्रोसरी के प्राइसेस कल से बहुत बढ़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम ही है कि नवंबर में जो फेडरल गवर्नमेंट था उसने बोला था कि दिसंबर और जनवरी में हम थोड़ा छूट दे रहे हैं ना, तो आपको कोई टैक्स, नो टैक्स इवेंट चल रहा था। अभी ये चूंकि नो टैक्स इवेंट से जो है वो खत्म हो गए हैं तो बहुत सारी चीजों के ऊपर अब आपके ग्रोसरी के आइटम्स पे टैक्स लगेगा। बाय जनवरी एंड जो था ये एनुअल इंडस्ट्री वाइड फ्रीज जो था ऑन ग्रोसरी प्राइसेस ये भी खत्म हो रहा है और ये सप्लायर्स जो हैं इसको खत्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बोला जी कि हाई फूड प्राइस का जो इन्फ्लेशन है उसको, जिसको कि कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये ग्रोसर्स जो हैं ये ही हमको एक्सपेंसिव प्राइस पे देते हैं तो हम भी उसको फिर अपने सुपरमार्केट्स में या अपने ग्रोसरी स्टोर पे महंगा बेचते हैं और हम, उन्होंने फिर अपना, आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले जब ट्रूडोस ऑफ की गवर्नमेंट ने इनसे बात किया था ग्रोसरी स्टोर के ओनर से तो उन्होंने बड़ा डिफेंड किया था इस चीज को। उन्होंने कहा अगर पीछे से चीज हमको एक्सपेंसिव मिलती है तो हम उसको कैसे सस्ता जो है वो करके बेचेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि ये वैसे जो फ्यू रिक्वेस्ट आई थी उनके पास वो कहते हैं जी बड़ी ही अनरीजनेबल थी क्योंकि जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास, यानी तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो लार्ज मल्टीनेशनल्स हैं इनको थोड़ा सा अभी बहुत इन्होंने पैसा कमा लिया और प्रॉफिट ले लिया, तो अभी हार्ड टाइम है, लोगों के साथ खड़े रहे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। टीबी के केसेस जो है जी वो बहुत ज्यादा टोरंटो के अंदर बढ़ रहे हैं और पिछले 20 साल में इतने नहीं थे जितने कि अब 2024 में जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे। टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने कंफर्म किया 375 इन्फेक्शंस लास्ट ईयर, हाईएस्ट सिंस 2002। डॉक्टर एलिजाबेथ री जो टोरंटो की एसोसिएट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ है, उसने कहा कि टीबी के केसेस सिटी में काफी बढ़ते जा रहे हैं और ये काफी चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। न्यू रिपोर्ट बाय स्टॉप टीवी कैनेडा, उसने बोला था कि इसका जो है ट्रीटमेंट्स है लेकिन कुछ जो है बैरियर्स हैं कम्युनिटीज में, वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। जो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज है वो बहुत ज्यादा इसके हो जाते हैं क्योंकि ये लोगों को बहुत बुरे से इम्पैक्ट करते हैं और सीरियस इलनेस हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये प्रिवेंटेबल भी है, ट्रीटेबल भी है और क्योरेबल भी है, तो आप जो है इसका दवाई जो मिलते हैं वो आप लें तो आप करेंगे। लेकिन ये टीबी का बढ़ जाना तो जरा अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको पता ही है ना कि ये जरा थोड़ा इन्फेक्शस हो जाता है। आर्म्ड विंग ऑफ हमास का जो कैसिम ब्रिगेड है, उसने कहा है कि उसने 3 कैप्टिव्स जो हैं उनको फ्री वो कर रहे हैं टुमारो इन गाजा, और इनके नाम हैं ओफर कैल्डरॉन, कीथ सीगल एंड यॉर्डन बिबस। इसराइल जो है उसने भी कहा है कि हम भी 9 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को जिनको के लाइफ सेंटेंसेस था ऑलरेडी, वन दूसरे जो लेंथी टर्म्स के अंदर थे, इन फोर्थ प्रिजनर्स फॉर कैप्टिव स्वॉप जो है वो हम कर रहे हैं। एक जो फिशरमैन जिसको कि आज मारा है इजरायली गन बोट्स ने ऑफ द कोस्ट ऑफ गाजा नियर नसीरात रेफ्यूजी कैंप, तो यानी कि जो इनकी मारामारी है इजरायली की वो चल रही है। इसके अलावा उन्होंने 2 लोगों को जो है वो लेबनान में भी मारा है, 2 लोगों को ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के जनीन रेफ्यूजी कैंप में भी मारा है। इसके साथ साथ जो इनकी एयर स्ट्राइक्स थे उसके अंदर 10 पैलेस्टीनियंस जो है वो तमून के एरिया में भी मरे हैं। अब क्योंकि एड इसमें आनी है क्योंकि बहुत ही बुरे हालात और फैमिन चल रहा है गाजा में और जो वेस्ट बैंक है उसमें, तो वहां पे अब कल जो है ये रफा का बॉर्डर खुलेगा। उसके सिलसिले में आज फ्रांस ने अपने 3 पुलिसमैन जो कि बड़ा स्पेशलाइज करते हैं हाईली इनसिक्योर बॉर्डर सिक्योरिटी, उनको एज पार्ट ऑफ ईयू मिशन जो है वहां पे भेजा है। और इटली जो है उसने 7 पैरामिलिट्री ऑफिसर्स भेजे हैं, 2 इटालियन ऑफिसर्स बड़े हाईली स्पेशलाइज उधर ऑलरेडी थे। स्पेनिश कंटिंजेंट का जो 10 एजेंट्स है वो कल उधर जाएगा। स्पेन के भी 2 वहां पे मेंबर्स हाईली ट्रेन बॉर्डर सिक्योरिटी के वहां पे थे, तो अब और 10 भी उनको जाके ज्वाइन करेंगे। तो इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस है उसने भी बोला है कि भई इनको बहुत ज्यादा फैमिन की यहां पे हालत है, तो अंदर जो है इधर गाजा में जानी पड़ेगी एड। UNRWA ने भी कहा है कि जी अगर ये एड अंदर ना गई वहां पे तो लोग जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे, खासतौर पे बच्चे जो बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन उनको हो गया है और मेडिसिन भी नहीं है तो बहुत सारे डेथ्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से है। पेनेनियन जो प्रेसिडेंट हैं होजे राउल मुलिनियो, उन्होंने आज कहा है जी कि ये जो पैनामा कैनाल के ऊपर डिस्कशन है ये बिल्कुल खत्म है, कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है क्योंकि अब पैनामा इसको कंट्रोल करता है। और ये बातें उन्होंने उस वक्त की जिस वक्त यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो अब ये पैनामा जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है उसके यात्रा के ऊपर निकलेंगे। तो इन्होंने आज होजे राउल ने बिल्कुल रिजेक्ट किया इनका ट्रंप का एक्यूजेशन कि ये जो कैनाल है जिसका के जो लिंक करती है कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन के साथ, तो इट इज ऑपरेटेड बाय चाइना। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत है। ट्रंप साहब ने थोड़े दिन पहले ये प्लेज किया था कि जो पैनामा का जो कंट्रोल है कैनाल का वो हम ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल ट्रेड रूट है। मुलिनो ने आज बताया रिपोर्टर्स को कि हम इसके ऊपर बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं करेंगे अगर मार्को रूबियो यहां पे आएंगे, और उन्होंने कहा जी कि ये बस ये जो है डिस्कशन बंद है, इट्स सील्ड, और ये पैनामा कैनाल पैनामा को बिलोंग करती है। अकॉर्डिंग टू यूएस मीडिया आउटलेट्स रूबियो जो है वो पैनामा में जाएंगे और बाकी के भी जो कंट्रीज हैं रीजन के उसमें भी एज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप एज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और यूएस जो है उसने, आपको हम बता दें थोड़ा हिस्ट्री के, क्या इसको पैनामा कैनाल को बनाया था और उसको बड़े अरसे तक कंट्रोल किया था। इन्होंने इनकी कंप्लीशन की थी 1914 में और 1977 तक इसको कंट्रोल किया, फिर एक ट्रीटी हुई थी और उसके बाद फुल कंट्रोल ऑफ पैनामा कैनाल जो था इसको पैनामा को दिया था इन 1999। तो ये सारा डिटेल है और उसमें वो जो है वो कहते हैं, ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं हम इसको वापस लेंगे। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुई इनासियो लुला डा सिल्वा जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाया तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे कैपिटल ब्रसिलिया के अंदर, उन्होंने कहा जी कि ब्राजील कोई किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहता है, हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप ब्राजीलियन प्रोडक्ट्स को टैक्स करोगे तो हम रेसिप्रोकेट करेंगे। ट्रंप साहब ने जब इलेक्ट हो रहे थे वो यूएस के लिए इलेक्ट हो रहे थे, लुलिया साहब ने कहा, उन्होंने कहा और मैं भी इलेक्ट हो रहा था ब्राजील के लिए, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मेरी भी रिस्पेक्ट करें, यानी कि वो ब्राजील की रिस्पेक्ट करें जैसे हम यूएस की रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स ऑल उन्होंने कहा जी कि हम उनको एक मॉडल देना चाहते हैं और दूसरे भी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनके के ऊपर ट्रंप साहब अपना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चला रहे हैं तो हमको उनको भी बताना पड़ेगा कि भाई आप जो है ये हमारे साथ बात करें और हम आपको तरीका बताएंगे। मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है क्लॉडिया शीन बॉम, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बिलीव करते हैं कि यूएस हमारे ऊपर कल सैटरडे को टैरिफ्स लगा रहा है, तो हम भी उनको बताना चाहते हैं कि हम भी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और हमारा एक प्लान जो है इन प्लेस है। अनलाइक यूएस ये जो टैरिफ्स हैं जो कि ये फर्स्ट को लगा रहे हैं और उन्होंने समझा कि जैसे हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बिल्कुल रिटेलिएटरी टैरिफ्स हम लगाएंगे, खास तौर पे जो है वो इनिशियली एग्जेम्प्ट हम करेंगे ऑटो इंडस्ट्री को, वैसे तो क्योंकि ये मेक्सिको की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और बहुत क्लोजली रिलेटेड है यूएस के साथ। ये वो कहते हैं जी कि हम फिर हौले हौले इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, पहले 5% फिर 10% फिर 20%। मेक्सिको की गवर्नमेंट जो है उसने भी ये कहा है कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो है हमारे में रिस्क करें, लेकिन अगर इन्होंने हमारे पे टैरिफ्स यूएस ने लगाए तो फिर हम भी यूएस के पोर्क प्रोडक्ट्स, चीज, एप्पल्स, ग्रेप्स, पोटेटोज, क्रैनबेरीज, बोर्बों, विस्की, मैन्युफैक्चर्ड स्टील एंड एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर हम भी टैक्स लगाएंगे।
तो जनाब ये था हमारी न्यूज का सेगमेंट नंबर वन और शाजी जी का बहुत शुक्रिया सेगमेंट वन के लिए। अब इनको हम दोबारा जहमत देंगे पार्ट टू के लिए। अब हम चलते हैं अजान के सेगमेंट की तरफ, अजान का सेगमेंट लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लें। शाजी जी तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह 6 वक्त पढ़ती हैं, 5 वक्त वे रेगुलर वाली और रात में भी उठकर ताज्जुद पढ़ती हैं,
मगर फिर भी हालात कुछ बदल नहीं रहे हैं। 7 मिलियन यूएस डॉलर हमारे पास नहीं
है। मैं ऐसा करता हूँ इस वक्त अजान के सेगमेंट का ब्रेक ले लेता हूँ, प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारा नंबर 4166201778 और सुनने के लिए
6478742900। लब पर दुआ है कयामत की हर वक्त, लब पर दुआ है मेरे दिल में इश्क़े हबीबे खुदा है। मदीने जो पहुँचे तो मिल जाए मंजिल, मदीने जो पहुँचे तो मिल जाए मंजिल, भटकने को सारा जमाना पड़ा है, भटकने को सारा जमाना पड़ा है, इसी घर में सारा मदीना बसा है। सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं, सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं, दयारे नबी से बुलावा मिला है, خدا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے۔
سامعین کرام، ٹورانٹو گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا، تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ففوضه أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کیا اور اپنے رخ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کیا اور اپنی کمر کو تیرے سہارے سے ٹکا لیا، شوق اور ڈر کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ۔ نہ کوئی مددگار ہے میرا، نہ نجات دینے والا ہے سوائے تیرے۔ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے رسالت عطا فرمائی۔
جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے
یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر میرے دے زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیرِ نگی جن و انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
کون کہتا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وقت پر کلیم ادا نہیں کرتی ایک اور مسکنسپشن کہ لائف کریٹیکل النس ڈسیبلٹی یا پھر ٹریول انشورنس بہت مہنگی ہیں نہیں صاحب آپ ایک بار انشور پرو کے فضل ودود سے بات کیجیے گا 28 years of underwriting experience and 2 years in the field لائف کریٹیکل النس ڈسیبلٹی ٹریول انشورنس ہر انشورنس کے معاملے کے لیے فضل ودود آف انشور پرو 905-607-5000
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز ساؤنڈ سسٹم انوویشنز چاندنی بینکویٹ ہال
30 years of hospitality experience corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ہلو جی ویلکم بیک اور اب ہم آگے ہیں واپس آپ کے پاس پھر سے اینڈ دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی سلطان بھائی سلطان بھائی ہوتے ہیں برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ آپ ان کے پاس جائیے اگر آپ کو بنڈل پیکجز چاہیے 801 بوے ڈرائیو ویسٹ پہ ہیں تو بہت ہی زبردست ان کے پاس ڈیلز ہیں اور کلرز بڑے خوبصورت ہیں اس پہ آپ جائیں اور آپ خرید سکتے ہیں اپنے پسند کی چیزیں اس کے علاوہ جناب چوپڑا جیولرز کے پاس آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں آئیں گے تو آپ کو دبئی جیسا فیل ملے گا بہت اچھی جیولری ہے ان کے پاس دبئی سنگاپور کی تو آپ ان سے خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پائل جیولرز اسلم بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ और वो भी कहते हैं मेरे पास इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सिंगापुर की बहुत अच्छी ज्वेलरी है, तो अगर आपको जो है कोई भी आपके घर का ओकेजन है और आपको वो चाहिए ज्वेलरी तो आप ले सकते हैं। अच्छा साहब, हम आपको बताएं कि जो ट्रम्प साहब के तीन खासतौर पर नॉमिनीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में स्यापे, वो स्यापे हो गया। तो वी विल स्टार्ट विद तुलसी गैबर्ट जो है वो ट्रम्प साहब की नॉमिनी है फॉर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तो उनको बेतहाशा सख्त क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी जो प्रीवियस पोजीशंस थी उनके ऊपर उनको किया गया, क्योंकि 2017 में उन्होंने सीरिया को विजिट किया था और बशार अल असद से मिली थी। इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा एडवर्ड स्नोडन के पीछे खड़ी रही और उन्होंने कहा जी इसको ठीक किया। तो आज उनको जो ये कॉन्फर्मेशन जो कमेटी थी उसने बहुत इनको कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर तुमको हम बनाएंगे इंटेलिजेंस का ये हेड तो तुम्हारे अंडर 18 एजेंसीज होंगी जैसे कि FBI, CIA, तो तुम जो है एडवाइस भी करोगी प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मैटर्स पे, तो ये तो बड़े ही तुम्हारे कंट्रोवर्शियल आइडियाज हैं, लेकिन कुछ भी कर लें जी, कुछ भी कर लें, ये जो है 53 सीट मेजॉरिटी जो है वो 100 मेंबर सेनेट के अंदर, उसमें ये इन्होंने फिल करनी ही करनी है और चाहे इनको ग्रिलिंग करें चाहे ना करें इन्होंने आ ही जाना है। बहरहाल ग्रिलिंग काफी की, रिपब्लिकन्स जो हैं वो अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ये स्मूथ सेलिंग देगी, इतनी भी नहीं थी। बहरहाल जी इनसे आज पूछा गया कि भाई एडवर्ड स्नोडन को जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर था उसने, जो कि आपको पता ही है कि उसने लीक किए थे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, उन्होंने कहा था कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो मैस सर्वेलेंस लोगों की करती है तो बिल्कुल सही नहीं है, और उसको इसने कहा था ये ही इज अ वेरी ब्रेव विसल ब्लोअर, और 2020 में इसने फिर जो है एक को स्पॉन्सर भी की थी हाउस रेजोल्यूशन जिसमें कि यूएस गवर्नमेंट को इसने कहा था कि एडवर्ड स्नोडन के अगेंस्ट जितने चार्जेस हैं उनको ड्रॉप करो। तो सेवरल टाइम्स इससे जो है वो पूछा कॉन्फर्मेशन हियरिंग के अंदर कि तुम क्या बोलना चाहती हो इसके बारे में, क्या बोलना चाहती हो, इसने बिल्कुल शी रिफ्यूज टू से एनीथिंग, और उनसे पूछा गया, बल्कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुम स्नोडन को ट्रेटर समझती हो कि नहीं, तो इन्होंने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा जनाब, दूसरी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो इनकी है ट्रम्प साहब की वो है कैश पैटेल, यानी कि कश्यप उनका नाम है, उसको इन्होंने पिक किया है टू लीड FBI, और ये जो यही जो कॉन्फर्मेशन हियरिंग हो रही थी यूएस सेनेट के अंदर उसमें इनको भी बहुत ज्यादा खींचा गया, उन्होंने कहा जी तुम FBI को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज करोगे। 44 ईयर्स इनकी एज है पटेल साहब की, और ये जो थे इन्होंने ट्रम्प साहब की पहली एडमिनिस्ट्रेशन जब ये आए थे प्रेसिडेंट उनके 2019 में तब भी इसको ज्वाइन किया था, लॉयर हैं वैसे, और एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए थे और बड़े खतरनाक स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने कहा था मैं प्रोसिक्यूट करूंगा जर्नलिस्टों को और अगर मैं जो है FBI का डायरेक्टर बना, और इसका जो हेडक्वार्टर है FBI का इसको मैं म्यूजियम में चेंज कर दूंगा ऑफ डीप स्टेट, और इसके अलावा उन्होंने कहा था जी कि ये जो है इस तरह की जो बातें की थी तो उसके लिए राइट्स ग्रुप्स ने भी कहा था कि ये तो बहुत ही जो है ये अजीब बातें कर रहे हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी में ऐसा, तो यही इनसे हियरिंग पे भी पूछा गया, और डेमोक्रेट्स ने बहुत ज्यादा इनको प्रेस किया कि क्या तुम क्वालिफाइड हो इतनी बड़ी पोजीशन लेने के, क्योंकि तुम्हारे कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स हमको नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी कंट्रोवर्शियल जो है आपको हमने बताया था रॉबर्ट एफ कैनेडी, जिसकी के जो कजन है कैरोलिन कैनेडी ने भी कहा था कि ये प्रेडेटर है, तो रॉबर्ट कैनेडी को भी आज उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो ये जो ट्रम्प साहब के ये पिक है फॉर हाउस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्रेटरी ये होंगे, उनको ग्रिल किया गया। उन्होंने कहा जी कि तुम तो अबॉर्शन नहीं मानते हो, तुम वैक्सीनेशन नहीं मानते हो, स्कूल शूटिंग्स के ऊपर तुम्हारे बड़े जो हैं रेडिकल व्यूज हैं, तो इन्होंने आज बहुत ज्यादा डाउन प्ले किया और ये बिल्कुल डिनाई किया कि कभी भी इन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बातें की थी। उन्होंने कहा जी ये जो मेरे पॉडकास्ट और टीवी के इंटरव्यूज होते हैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम लोग ले लेते हो और मिस कैरेक्टराइज करते हो, बीच में से सेंटेंसेज उठा लेते हो, पॉडकास्ट में मुझे पूरी मैं बात नहीं करता था और वो बात बीच बीच में मुझे रोक रोक के पूछता था, मेरी पूरी बात नहीं होने देता था, और तुम लोग भी वही कर रहे हो, लेकिन इन्होंने बड़े क्लियरली कहा हुआ है। लेकिन आज तो इन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल एंटी वैक्सीनेशन नहीं हूं, मैं बिल्कुल प्रो सेफ्टी हूं, लेकिन पहले इससे पहले इन्होंने कहा था कि जो वैक्सीनेशन कराते हैं उनको ऑटिज्म हो सकता है और चाइल्डहुड में जो वैक्सीनेशन है वो कोई इतनी सेफली टेस्ट नहीं हुई है, तो आज उनसे इसी के बारे में क्वेश्चन किया कि वैक्सीन सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर कोई डाउट नहीं करता हूं और ये मेरी जो बातें हैं तुमको तोड़ मड़ोड़ के तुम लोग पेश करते हो, तो मैंने तो उसको कहा था कि ये वायरसेस जो हैं बहुत ज्यादा फैल रहे हैं और उसमें हर वैक्सीन हर चीज में सेफली और इफेक्टिवली जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो जनाब बहरहाल ये काफी जो है इन्होंने इस तरह की बातें की। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसकी आज मीडिया ब्रीफिंग हुई, जिसमें कि उन्होंने जो यूएस के साथ रिलेशन है उनके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल एक्नॉलेज करता है यूएस का इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, और इट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेज एंड फर्दर सॉलिडिफाई एंड स्ट्रेंथन टाइज फॉर बोथ पाकिस्तान एंड यूएस एंड वर्क फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा जी हम हर लेवल पे बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स पे एंगेज हैं यूएस गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल हमारा ये बहुत बड़ा और जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा और पावरफुल इकोनॉमी है यूएस, और हमारे पास जो इनका फॉरेन एड का जो प्रोग्राम चल रहा था जो उन्होंने बंद कर दिया, अभी तो टेम्परेरली बंद किया है 90 डेज के लिए ट्रंप साहब ने, लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद ये आगे तक चलेगा। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर हम बात करें। फॉरेन ऑफिस ने आज कहा जी कि बहुत अरसे से यूएस एड जो थी बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट में काम करती थी हमारे पाकिस्तान का, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, नार्कोटिक्स कंट्रोल का जो सेक्टर था, और उसमें हम चाहते हैं कि ये रहें। और उन्होंने कहा जी कि हम अब कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइड जो है इनके ऊपर इश्यूज रिजॉल्व करके इसके ऊपर काम करें, तो आप पता नहीं करेंगे कि नहीं। ये जो बहुत ही आपको पता ही है कि कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स आए हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016 पे, इस पे आज सारे मुल्क में जर्नलिस्टों ने और मीडिया बॉडीज ने ब्लैक डे ऑब्जर्व किया अंडर ज्वाइंट एक्शन कमेटी, और सारे मुल्क में भी और आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी काले झंडे लहराए, चेन्स उठाए जिनको के मुंह पे डाला कि जी हमारा तो जबान बंद कर दिया गया है, और जितने भी नेशनल प्रेस क्लब्स थे उनके बाहर इन्होंने मोर्चे निकाले और ब्लैक आर्म बैंड्स भी इन्होंने पहने। उन्होंने कहा जी कि ये जो कॉल थी ये दी थी पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इसको एंडोर्स किया था इन्होंने जेएसी वालों ने, और इन्होंने कहा था जी कि इसके अंदर हैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स न्यूज डायरेक्टर्स। इन्होंने कहा जी ये बिल अप्रूव किया गया है बगैर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स से पूछे हुए, और ये फॉरन गवर्नमेंट ये लॉ को विदड्रॉ करे। पीएफयूजे के जो प्रेसिडेंट है अफजल बट, उसने वार्न किया गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा कि तुम कभी भी प्रेस फ्रीडम को वीक नहीं कर सकेंगे, हमारा हिस्ट्री देख लो आप, जब जियाउल हक के जमाने में भी हम पे बहुत हार्डशिप्स आते थे और हमको मारा पीटा जाता था और कोड़े लगाए जाते थे, फिर भी हम चुप नहीं रहते थे। तो ये जो आपने लॉ लाया है ये हमारा कैमरा और पेन जो है उसको लॉक में डालेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जी कि ये सब का सब फोन जो है स्मार्ट फोन्स को साइलेंस करने के लिए है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज जो बड़े प्रोटेस्ट हुए वो क्वेटा, लाहौर, कराची, ठट्ठा, लड़काना और भी बहुत सिटीज के अंदर हुए। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अताला तारण ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि हम मीडिया के साथ बात करने को तैयार है, तो फिर पहले ही कर लेना था ना भाईजान। और उन्होंने कहा जी कि ये कंट्रोवर्शियल पार्ट्स का तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके इम्प्रूवमेंट की क्या बात कर रहे हैं, कौन से प्रोविजंस आपको पसंद नहीं है हमको बताएं, देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हम कर लेंगे। तो अब भाईजान फिर पहले ही कर लेना था। यूरोपियन यूनियन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स हैं अम्बेसडर ओलाफ स्कूग, वो आज पहुंचे हैं, कल पहुंचे थे वो वैसे पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तान को काफी दबाया है। ये तो मतलब है पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में खबर नहीं आ रहा है, लेकिन काफी उन्होंने दबाया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को हम बहुत ही प्रेफरेंशियल जीएसपीएस स्टेटस देते हैं, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न है आपके मुल्क के अंदर जो बैड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चल रहे हैं, तो अगर आपने ये अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ठीक नहीं किए और टेंजिबल रिफॉर्म्स नहीं किए, तो अभी जो एक रिन्यूअल आने वाला है और री एप्लीकेशन आप डालने वाले हो फॉर न्यू जीएसपी प्लस के लिए, तो वो शायद आपके लिए मुश्किल होंगे। स्कूप साहब जो है उन्होंने बहुत सारे मीटिंग्स किए फेडरल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ, मिलिटरी लीडरशिप के साथ, सीनियर ऑफिशियल्स, यूनाइटेड नेशंस के बॉडीज, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और बिजनेस सेक्टर के लोगों के साथ। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलकर ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस पे काम करना चाहते हैं, और हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप डिलीजेंट पॉलिसीज बनाओ और मीनिंगफुल कंसल्टेशन करो सब स्टेक होल्डर्स के साथ। अगर आपने नहीं किया, यानी कि जाहिर है उनका कहने का मतलब यह है कि आपके लिए फिर मुश्किलें आएंगे। इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो बेचारा मस्कीन जो बहुत ही थकेला हो चुका है, ये इन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग्स की है उसका कोई तस्वीर भी अपने नहीं डाला है, सिर्फ जो है लॉ मिनिस्टर और बाकी लोगों के साथ तस्वीरें डाले हैं। तो बहरहाल इन्होंने बड़े अच्छी तरह से कहते हैं ना वो साढ़े पंजाबी चंगी छतरौल की थी, चंगी छतरौल की थी ना, इन्होंने कहा जी इंसान दे बंदे दे पुत्र बनो, ठीक है जी ऐसा है। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान में चूंकि अब दिल्ली में आने वाले हैं इलेक्शन, तो 7 आप एमएलएज जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन किया है, क्योंकि उनको जो है टिकट्स नहीं दिया गया था फॉर अपकमिंग दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। इसके अंदर जो लोग शामिल हैं वो हैं रोहित महरूलिया फ्रॉम त्रिलोकपुरी, मदन लाल फ्रॉम कस्तूरबा नगर, राजेश ऋषि फ्रॉम जनकपुर, भावना गौर फ्रॉम पालम, भूपिंदर सिंह जूने फ्रॉम बिस्वासन, पवन कुमार शर्मा फ्रॉम आदर्श नगर। और इन्होंने कहा जी कि जो पहला होता था, जो आइडियाज होता था इसका आपका, वो अब बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के अंदर सिंगल फेज के अंदर 5 फरवरी को इलेक्शन होंगे और इसका काउंटिंग जो है वोट्स का वो 8 फरवरी को होगा। रोहित कुमार जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम दलित से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से, तो आपने दलित और वाल्मीकि कम्युनिटी से जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, बल्कि इस कम्युनिटी को अपने पोलिटिकल गेम्स के लिए आपने एक्सप्लॉयट किया और कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट था उसको भी एंड नहीं किया। मदन लाल ने कहा कि मेरा तो फेथ ही मैं खो चुका हूं आप में और अरविंद केजरीवाल में। राजेश ने कहा जी कि पार्टी जो है वो अपने वैल्यूज जो कि करप्शन फ्री, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के थे उसको भूल चुकी है। पवन ने कहा जी कि जो पार्टी का ऑनेस्टी का आइडियोलॉजी था उससे ये डेविएट कर गए हैं और जिसके के लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी और मुझे आम आदमी पार्टी के प्लाइट पर बहुत ज्यादा अफसोस है। भूपिंदर ने कहा कि मैंने इसलिए रिजाइन किया है क्योंकि आपके भी फाउंडिंग वैल्यूज अभी आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप जो है उसने आपको पता ही है कि डोमिनेट किया था लास्ट टू असेंबली इलेक्शंस में, पहली बार 67 और दूसरी बार 62 सीट्स जीते थे इन 70 सीट असेंबली, और अब भी वो चाहते हैं कि अब दिल्ली पे अपना जोर बनाए रखें, लेकिन अब रखे सकेंगे या नहीं अब नहीं पता। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ठनी हुई है। मोदी जी ने आज बहुत ज्यादा स्लैम किया सोनिया गांधी जी को फॉर हर रिमार्क्स ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने कहा जी ये जो रॉयल फैमिली है उसने बहुत ही इंसल्ट किया है एक ट्राइबल डॉटर को, और क्योंकि इनका मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, ओडिया है, तो उसमें ये बात करते हैं, तो उन्होंने जो स्पीच किया वो बहुत ही वंडरफुल तरीके से उसे इंस्पायर किया पार्लियामेंट को, लेकिन जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे वो बोल रहे थे कि इनका स्पीच बहुत ही बोरिंग था, और एक ने तो यहां तक कहा कि इनका स्पीच जो है बेचारी पुअर थिंग का क्या था। तो ये इस तरह के रिमार्क्स जो हैं 10 करोड़ ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया जो है उसको इंसल्ट करते हैं। अब इसके ऊपर जाहिर है कि राहुल गांधी ने भी कुछ जवाब तो देना था। राहुल गांधी ने अटैक किया फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को। उन्होंने कहा कि ये जो बजट लेकर आ रही है तो ये इसके अंदर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उस वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए खाली बजट है। एक रैली से बात कर रहे थे ये राहुल गांधी और उन्होंने कहा जी कि ये जो बजट का प्रोसेस है इसके अंदर तो खाली कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को बिठाया जाता है और इसके अंदर तो अभी आप देखना पार्लियामेंट के अंदर ये एक ब्रीफ केस उठाए हुए आएगी और एक तस्वीर खिंचाएगी और उसमें दलित और ट्राइबल और बैकवर्ड क्लास का कोई भी आदमी नहीं नजर आने वाला है। ये जो 90 ऑफिसर्स जिन्होंने मिलकर बजट पेश बनाया है जो कि कल अब पेश किया जाएगा उसके अंदर सिर्फ 3 लोग जो है बैकवर्ड क्लास से है, तो ये जनाब चक्कर है। आमिर खान एक बड़े ही जबरदस्त प्रमोशनल इवेंट पे काम कर रहे थे जो कि नागा चेतनिया और सई पल्लवी की मूवी जो है ठंडल जो है उसके लिए मुंबई में ये थे और वहां पे लोगों ने इनसे पूछा कि कोई आप अपना फेवरेट सॉन्ग बताओ अपनी फिल्म का। उन्होंने कहा जी मेरी अपनी खुद की फिल्म का नहीं बल्कि सलमान की फिल्म का एक मेरा जो सॉन्ग है बड़ा फेवरेट है जो उसने खुद ही कंपोज किया था, ढिंका चिका फ्रॉम 2011 फिल्म रेडी। और उसने कहा जी कि वैसे तो मैं नॉर्मली डांस वांस नहीं करता हूं लेकिन वो गाना ऐसा है जैसे ही बजता है तो मैं नाचना शुरू हो जाता हूं। अच्छा जी फैन ठीक है। शाहिद कपूर की फिल्म देवा आ गई है थिएटर्स में आज। इसको डायरेक्ट किया है रोशन एंड्रयूज ने और इसके धमाका खेज किस्म के रिव्यूज आ रहे हैं। लोग कहते हैं शाहिद हु प्लेज रिबेलियस कॉप इज एंड हु इज ऑन अ रिवेंज स्प्री। लोगों ने कहा कि वाह 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 क्या काम किया शाहिद ने और ये तो इसको अवार्ड मिलना चाहिए जितना ये मैड हो जाता है फिल्म के अंदर। और ये अपने जब बीस्ट मोड में आ जाता है तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। ये फिल्म 100 करोड़ जरूर बॉक्स ऑफिस में बनाएगी। लोगों ने कहा इट्स एन अमेजिंग फिल्म एवरीबडी मस्ट वॉच और ये जब भी काम करता है ऐसे किसी उसमें तो ही रेजेस द बार ऑफ एक्टिंग और इसके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा। और जनाब डब्बा कार्टल, जी हां डब्बा कार्टल का टीजर आ गया है यूट्यूब के ऊपर जिसको के रिलीज किया है नेटफ्लिक्स इंडिया ने। आपको पता ना हम लोग तो टिफिन बोलते हैं लेकिन ये इंडिया में उसको डब्बा बोलते हैं जिसमें ये लोग खाना लाते हैं ना उसको डब्बा बोलते हैं, वही डब्बा कार्टल। अच्छा अभी ये डब्बा कार्टल का स्टोरी क्या है जो नेटफ्लिक्स में आने वाला है, ये जनाब इसको कहा जा रहा है कि इतनी जबरदस्त इसकी प्रोडक्शन है कि इसका मुकाबला जो नेटफ्लिक्स की जो मूवीज थी नार्कोस और नार्कोस मेक्सिको उसके लेवल के हैं। तो ये जो है ये थाने जो कि लोकल मुंबई का इलाका है, ये कह रहे हैं कि ये नार्को थाने जिसका नाम होना चाहिए था, डब्बा कार्टल नहीं होना चाहिए था। इसमें दिखाया गया टीजर जो भी उन्होंने छाया किया उसमें बताया है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ इंटरप्रेन्योरियल जो है वो मिडिल क्लास वुमेन है थाने से, जो एक डब्बा सर्विस कर रही है, घर में खाना बनाती है और फिर क्लाइंट्स को वो टिफिन जो है वो जा के डिलीवर करती हैं, लेकिन असल में वो जो पका हुआ खाना है उसके अंदर ड्रग्स भी उसके उस डब्बे में है। तो ये अपने क्लाइंट्स को ड्रग्स भी दे रहे हैं और कोई इन पे शक नहीं करता है क्योंकि उनको लगता है कि ये तो डब्बा लेकर जा रहे हैं, यानी कि खाना लेकर जा रहे हैं डिफरेंट ऑफिसेज में। इस जो ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स पे आएगा उसमें काम कर रहे हैं शबाना आजमी जो कि इस ग्रुप को लीड कर रही हैं, यानी कि रिंग लीडर हैं, और इसके अलावा निमिषा सजायन, शालिनी पांडे, अंजलि आनंद, साय तमहाकर है, लिलेथ डुबे जो है वो शबाना आजमी का जो कॉन्शियस का वॉइस है उसको प्ले कर रही है और वो बार बार इसको बताती है कि यू हैव टेस्टेड ब्लड और अब तुम्हारे लिए रेगुलर लाइफ में क्राइम फ्री लाइफ में जाना बहुत ही मुश्किल है। तो जबरदस्त धांसू किस्म का टीजर आप देखिए। पीसीबी ने आज अनवेल कर दिया है जी अपना 15 मेंबर स्क्वाड फॉर अपकमिंग ट्राई नेशन सीरीज जिसके के अंदर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका रहेंगे और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का भी स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है। वहां पे 4 चेंजेस हैं इन 15 प्लेयर स्क्वाड जो खेलेगे जिन्होंने के खेला था ओडीआई का सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी लास्ट ईयर। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान, सायम अयूब, सुफियान मुकीम, इनको रिप्लेस किया है बाय फहीम अशरफ, फखर जमान, खुशदिल शाह एंड साउद शकील। कैप्टन जो है वो मोहम्मद रिजवान रहेंगे, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन। इसमें 3 वो लड़के भी डाले हैं जो कि 2017 के टाइटल विनिंग साइड में थे जैसे कि बाबर आजम, फहीम एंड फखर। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, चीफ हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जी बहुत ही खूबसूरत रेनोवेटेड हो गया है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला रहे हैं ऑन February 7। लेकिन वाकई जी क्या कमाल है, अब हम बड़ा जो मर्जी एतराज कर लें मोहसिन नकवी पे, जो स्टेडियम उसने शक्ल बना दी है ना ये कराची और लाहौर में, वाह 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 क्या बात है, ब्यूटीफुल बहुत, आपको नजारा आएगा, नजारे आएंगे देखेंगे आप। न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है उसने भी ऐड किया है जेकब डफी को अपना स्क्वाड में ट्राई नेशन सीरीज जो कि पाकिस्तान में होने वाला है February 8-14 में। राइट आर्म पेसर जो है वो सर्व करेगा एज अ कवर फॉर लोकी फर्गसन जो कि अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं IL T20 इन UAE में। डफी को बुलाया था उसके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए इन होम व्हाइट बॉल सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, इसने 12 विकेट्स ली थी इस इन 5 मैचेस में। और न्यूजीलैंड जो है वो अब जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग मैच खेलेगा ऑन February 8 इन लाहौर और फेस करेगा साउथ अफ्रीका को एट सेम वेन्यू ऑन February 10। उसके बाद ये कराची ट्रेवल करेंगे और क्वालिफाई करेंगे अगर ये फाइनल के लिए और खेलेंगे वहां पे 14 February को फाइनल और ये अपना मैच किक ऑफ करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का इन ओपनर अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन February 19 इन कराची। उसके बाद फिर ये पिंडी जाएंगे फॉर सेकेंड ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन February 24। उसके बाद ये दुबई जाएंगे टू फेस इंडिया ऑन March 2। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट कैनेडाज फ्लाई वेट जैस्मिन जसू देवीसियस, क्योंकि ये एंटर कर रही है रिकॉर्ड बुक टुमारो सैटरडे को व्हेन शी टेक्स ऑन ब्राजीलियन अपोनेंट मायरा शितारा एंड शी विल बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर टू अपीयर ऑन UFC कार्ड इन सऊदी अरेबिया। जैस्मिन ने कहा कि जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला और मैं औरतों का मार्शल आर्ट्स जो है एक दूसरे कंट्री में, एक ऐसे कंट्री में जाके, यानी कि सऊदी अरेबिया के जैसे कंट्री में जाके मैं जो ये रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं और मैं ऑनर फील कर रही हूं। सारा चीज के एक मॉरस जो है वो दूसरी कनेडियन है एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू विन UFC बाउट इन UAE इन September 2019। और जो है इसने जो है रोका था, यानी कि किया था डिफीट किया था लियाना जोजुआ को इन थर्ड राउंड एट UFC 242 जो कि अबू धाबी में हुई थी। तो जनाब ये हैं हमारी आज की खबरें गरम गरम,
तो ये थी गर्मा गर्म ठंडे माहौल में खबरें।
यस,
आई होप कि आप लोगों के ब्लड प्रेशर और सारी चीजें कंट्रोल हो गई होंगी और वीकेंड जो है वो एंजॉय करें। जबकि वैसे तो एंजॉय नहीं होगा, कल सुबह जब आप उठेंगे तो वैसे ही आपने जैसा कहा एक तो जीएसटी वो खत्म होगा, ग्रोसरी से जब आप इधर उधर नीले पीले स्टोर पहुंचेंगे
जी जी जी,
तो आपको एक डॉलर की चीज पर जो है आपको जो भी $10 की चीज आपको $7-8 में मिल जाती थी, $8
अब टैक्स लग जाएगा ना, वो $7 में मिल रही थी, अब वो $7 है तो वो $10 की मिल रही
थी दोबारा हो जाएगी। और उसके अलावा टैरिफ के बाद क्या होता है, गैस प्राइस सुबह आपको $2 की मिलती है, कितने डॉलर की मिलती है ये पता नहीं,
खतरे में नाक चीजें आ रही हैं।
लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चल जी, बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका, एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह
दो दिन की छुट्टी पे हूं।
आप छुट्टी करें 2 दिन, वैसे तो आप महीने में एक आध दिन एक्स्ट्रा कर ही लेती हैं, लेकिन ये वाली 2 दिन की पूरी छुट्टी आपकी,
ठीक है, पूरी
पूरी ये आपको पूरी देता हूँ,
अच्छा अच्छा,
कोई सवाल नहीं आपके साथ,
अच्छा चलो ठीक है।
तो जिंदगी रही और आप जिंदा रही, तो मंडे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो हम सामईन का नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे शामिल होने का और ई आवाज टीवी देखने का, 770 AM साजो आवाज प्रोग्राम सुनने का, हमारा नंबर 6478724900 सुनने के लिए, और ई आवाज टीवी IPTV बॉक्सेस पर चलेंगे ना। अब इजाजत लेने का वक्त आ गया पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, आरफा मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो मंडे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
मैं तो गया।